कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस URL katha-path.blogspot.in। प्रभात रंजन की कहानी, पत्र लेखक, साहित्य और खिड़की। प्रिय सुम्मी, सबके जीवन में एक मोड़ आता है, हमारे जीवन में भी आया। परिस्थिति ने हमें उस मोड़ से अलग अलग रास्तों की तरफ मोड़ दिया है। तुम जा रही हो सुख के संसार में, मेरे लिए दुख का वो सूना रास्ता बचा है जो न जाने मुझे कहां ले जाए। मुझसे ये आखिरी वादा करो, मुझे भूल जाना। मेरे पास आभा स्टूडियो की खिंचवाई फोटो है, तुम्हारी आखिरी निशानी की तरह रहेगी मेरे पास। भूल जाना तुम, मेरा क्या, आंधी की तरह तुम्हारे जीवन में आया था, एक तूफान आया और उसने हमें एक नदी के दो किनारों पर पहुंचा दिया। 2 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। उस रात जब चांद बसवाड़ी के घने झुरमुट के पीछे छिप रहा था, तुमने कहा था, तुम्हारे आखिरी शब्द गीले चुंबन के उस आखिरी जूठन की तरह मन में ठहरे रह गए। अंदर से तुम्हारी दादी के खांसने की आवाज आई थी जब तुमने आखिरी विदा ली थी, अलविदा। कल सुबह जब तुम अपने घर के बरामदे के छज्जे के तीसरे बांस के अंदर से कुमड़े के पत्ते में लिपटी मेरी इस आखिरी चिट्ठी को निकालोगी, मैं गांव के सिवान से दूर जा चुका होऊंगा। सुबह को डूबते आखिरी तारे के अंधेरे में यहां से दूर चला जाऊंगा, अपने गांव सुग्गा से, जहां अब मेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। 2 दिन बाद जहां बाजे बजेंगे, रात भर रोशनी होगी, भोज होगा, सब होंगे, बस मैं नहीं रहूंगा। शहनाई की उस गूंज में मुझे कौन याद करेगा, क्या तुम भी? मुझे भूल जाना, अपनी जिंदगी के नए उजालों में तुमको कभी मेरी याद ना आए, यही मेरी आखिरी दुआ है तुम्हारे लिए। मेरा क्या, सांस लेने को अगर जीना कहते हैं तो तुम्हारे बगैर वैसे ही जीता रहूंगा। मेरे जीवन में जो सबसे अच्छा था उसकी यादों को संजोए। कल ये कविता तुम्हारे लिए लिखी थी। अगर डूला कभी इस राह से गुजरे कुबेला, यहां अम्बवा तरे रुक एक पल विश्राम लेना, मिलो जब गांव भर से बात कहना बात सुनना, भूल कर मेरा न हरगिज नाम लेना, अगर कोई सखी कुछ जिक्र मेरा छेड़ बैठे, हंसी में टाल देना बात आंसू थाम लेना, शाम बीते दूर जब भटकी हुई गायें रंभाएं, नींद में खो जाए जब खामोश डाली आम की, तड़पती पगडंडियों से पूछना मेरा पता, तुमको बताएंगी कथा मेरी व्यथा हर शाम की, पर न अपना मन दुखाना, मोह क्या उससे कि जिसका नेह टूटा गेह छूटा, हर नगर परदेश है जिसके लिए अब हर डगरिया राम की, भोर फूटे भाभियां जब गोद भर आशीष दे दें, ले विदा अमराइयों से चल पड़े डोला हुमक कर, हां कसम तुमको तुम्हारे कूपलों से नयन में आंसू न आए, राह में पाकड़ तले सुनसान पाकर, प्रीत ही सब कुछ नहीं है, लूक की मर्याद है सबसे बड़ी, बोलना रुंधते गले से ले चलो जल्दी चलो पी के नगर, पी मिले जब फूल सी उंगली दबाकर चुटकियां लें और पूछें क्यों, कहो कैसी रही जी ये रात ये सफर की रात, हंसकर टाल जाना बात, हंसकर टाल जाना बात आंसू थाम लेना, यहां अमवा तरे रुक एक पल विश्राम लेना, अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुबेला, अब बस विदा, पहले सिर्फ तुम्हारा अब सर्वहारा कमलेश। बरसों बाद जब अपने गांव गया तो एक दिन अपनी बची खुची पुरानी किताबों को यूं ही पलटने लगा, मन कुछ नॉस्टैल्जिक हुआ जा रहा था। वीरेश्वर प्रसाद सिंह की भारतीय शासन और राजनीति पुस्तक में ये चिट्ठी क्या मिली, मन पूरा ही नॉस्टैल्जिक हो गया। 20 साल से भी पहले का वो दौर याद आने लगा जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था। शहर के इकलौते कॉलेज में जो पढ़ने में अच्छे समझे जाते थे वो साइंस पढ़ते थे, हम जैसे भुस्कौल आर्ट्स पढ़ते थे। कॉलेज में सारे अच्छे कहे जाने वाले काम साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाम होते थे, लेकिन कभी कभी आर्ट्स पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी भी चमक जाते थे, कहिए भुकभुका जाते थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे शहर के सबसे बड़े कवि पूर्णेंदु सर हमारे कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे, उनकी क्लास में सबसे ज्यादा भीड़ जुटती थी। जो विद्यार्थी साहित्य में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते थे वो उनकी क्लास में कविता कहानी सुनने आ जाया करते थे। उस दिन उन्होंने नारायण खीम का स्मृति कविता प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में मेरे नाम की घोषणा करते हुए ये कह दिया कि इस बालक की कवि प्रतिभा प्रभावित करती है, अगर इसी तरह इसने कविता का अभ्यास जारी रखा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एक श्रेष्ठ कवि बन सकता है। सिर्फ 1,000 रुपये के नारायण खेम का स्मृति कविता प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता के रूप में नहीं, बल्कि पूर्णेंदु सर के इस वक्तव्य के कारण कॉलेज में खुसुर पुसुर में मेरा नाम फैलने लगा। पूर्णेंदु सर ऐसे किसी की तारीफ नहीं करते हैं, ये तो लगता है कवि जी कहलाएगा। यार दोस्तों ने कविया बुलाना शुरू कर दिया। सीनियर लोग मिलने पर पहचान लेते और कई तो कह देते कोई काम हो तो बताना, कविता लिखकर भी कोई प्रसिद्ध हो सकता है। मुझे तब समझ में आया था कमलेश सिंह भी ऐसा ही एक सीनियर था, गांव सुग्गा के विशुनदेव सिंह का पोता। विशुनदेव सिंह तरियानी ब्लॉक के 2 बार प्रमुख रह चुके थे। कमलेश सिंह के कॉलेज में घुसते ही जूनियर लोग प्रणाम भैया कहने लगते। जब उस कमलेश सिंह ने कहा कि कोई बात हो तो कहना, सच कहता हूं अपने कवि होने पर उस दिन जितना गर्व हुआ था आज तक नहीं हुआ। कमलेश सिंह जिसके सिर पर अपना हाथ रख दे वो पूरे शहर में छाती तान कर चलता। सिनेमा हॉल में कितनी भी भीड़ हो लाइन के बाहर टिकट मिल जाता, साइकिल स्टैंड वाला साइकिल लगाने के पैसे नहीं लेता, होटल वाले उधारी पर चाय नाश्ता करवा देते। कमलेश सिंह का नाम ही कुछ ऐसा था, शहर में सब जानते थे। चुपचाप रहने वाला कमलेश बात बात में चाकू तान देता था। कहते हैं एक बार रामनवमी के मेले में बोचहा गांव वालों ने उसे घेर लिया था। गांव वालों का कहना था कि उसने उनके साथ मेला घूमने आई रूमा का दुपट्टा खींच दिया था और फिर साइकिल से भागा जा रहा था। उसने समझाने की बहुत कोशिश की कि हवा के कारण उस लड़की का दुपट्टा खुद उसके साइकिल के हैंडल में आकर फंस गया था। जब गांव वालों ने उसकी एक न सुनी तो उसने पास ही कचरी छान रहे हलवाई का छनोटा उठा लिया और उसे तलवार की तरह भांजता हुआ अपनी साइकिल पर सवार होकर निकल गया था। बोचहा गांव के कई पुरुष उस दिन घायल हुए लेकिन कमलेश सिंह को कोई पकड़ नहीं पाया। बहरहाल अभी कविता का जिक्र आया था तो उस ऐतिहासिक कविता की 2 पंक्तियां आपके लिए भी। दर्द जिसको कहते हैं प्यार का नगीना है, आंसू मत कहो इसको आंख का पसीना है। कविता तो कविता, उन दिनों चिट्ठी लिखने के कारण भी मेरी गुप्त रूप से ही सही लेकिन ख्याति हो गई थी। हुआ ये कि मेरे एक सहपाठी प्रहलाद का दिल मनोरमा इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली सुरभि बाला के ऊपर आ गया था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। कहने का मौका मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था, कहां मिलता कहां कहता। उसने ये तय पाया कि जब वो स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर दूर घिरनी पोखर कॉलोनी अपने घर लौटती है तो रास्ते में किसी तरह मौका देखकर चिट्ठी देकर अपने दिल की बात कह दी जाए। हैंडराइटिंग पहचान में ना आ पाए इसलिए उसने मेरा सहारा लिया। पूर्णेंदु सर कहते हैं तुम बड़ा बढ़िया लिखते हो, तनिए एक प्राइवेट चिट्ठी लिखो ना। मैंने चिट्ठी लिखी। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो मौका देखकर प्रहलाद ने वो चिट्ठी उसके हाथ में पकड़ा दी। अगले ही दिन सुरभि बाला ने जवाबी चिट्ठी उसके नाम लिख दी थी। मैंने प्रहलाद के लिए लिखी उस चिट्ठी में उसके कहने पर ये लिखा था, अगर उसका जवाब हाँ है तो कल दोपहर मेरी साइकिल दीपक स्टोर के बाहर खड़ी होगी, तुम उसके पीछे कैरियर में किताबों के बंडल के बीच अपनी जवाबी चिट्ठी फंसा देना, मैं सामने से आकर उसे ले लूंगा। अगले दिन उसने इधर उधर देखा और ठीक यही किया। उसने चिट्ठी में और बातों के अलावा एक बात और लिखी थी, एक बात है आप लिखते बहुत अच्छा हैं। जब प्रहलाद ने मुझे ये बात बताई तो उस दिन मुझे वो पूर्णेंदु सर से भी ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट लगा था। तब तक अपने दिल की बात किसी को चिट्ठी लिखकर कह नहीं पाया था। कह तो खैर बाद में भी नहीं पाया, मैं चिट्ठी लिखकर अपने दिल की बात तब तक किसी को कह नहीं पाया, दूसरों के लिए चिट्ठी लिखता रहा। खैर प्रहलाद ने ये बात कुछ और लोगों को बताई, उन्होंने कुछ और लोगों को, बस बात फैल गई कॉलेज में। उसी ख्याति के कारण कमलेश सिंह ने मुझे एक दिन लोहिया लॉज के अपने कमरे में बुलाया, बड़े प्यार से रामानुज का मशहूर मूढ़ी कचरी खिलाया और जब मैं कुछ सहज हो गया तो उसने कुछ प्राइवेट लिखने का अनुरोध किया। मेरे लिए आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, हमेशा मदद करने की बात करने वाला आज मदद मांग रहा था। उसने किसी फिल्म निर्देशक की तरह सिचुएशन समझाई कि उसके गांव में ही दूसरे टोले में रहने वाली सुमिता, जिसे वो प्यार से सुम्मी बुलाता है, उसकी शादी तय हो गई थी। वो उसको अंतिम चिट्ठी लिखना चाहता था, चिट्ठी ऐसी लिखना कि उसको जीवन भर याद रहे। उसने कहा था, मैं किसी संवाद लेखक की तरह चिट्ठी लिखने लगा। अब सुम्मी को चिट्ठी जीवन भर याद रही या नहीं, लेकिन कमलेश सिंह उस चिट्ठी के बाद वैसे ही मेरे मुरीद हो गए जैसे पूर्णेंदु सर हो गए थे। अगर मैं करियर की दौड़ में न पड़ा होता, अगर मैंने हिंदी में लिखने को दोयम दर्जे का काम न समझा होता, अगर मैंने लिखने से अधिक कमाई को महत्व न दिया होता, सबसे बढ़कर अगर मैंने पूर्णेंदु सर की बातों को गंभीरता से लिया होता, तो आज मेरा भी नाम लेखकों में शुमार किया जाता। मैं तो बस कुछ गुमनाम लोगों की गुप्त चिट्ठियों का लेखक बनकर रह गया था। अब सोचता हूं तो लगता है न जाने क्या था मेरे लिखे में। मैंने जिस जिस मित्र की प्रेमिकाओं के लिए प्यार की गुप्त चिट्ठियां लिखी, सबका भाग्य कमलेश सिंह जैसा रहा। सबकी प्रेमिकाएं डोला में चढ़कर कुबेला निकल गईं। कमलेश सिंह उस चिट्ठी के बाद मुझे अपना बहुत करीबी मानने लगा। उसे पूरी चिट्ठी याद हो गई थी। कई बार अकेले में उसने मुझे वो चिट्ठी जुबानी सुना दी थी। वो अक्सर मेरी मदद करने की कोशिश करता। एक बार कहने लगा कि मुझे बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़नी चाहिए, उससे आगे चलकर मैं अच्छा लिख पाऊंगा। सिर्फ कहा नहीं, उसने मुझे जिंदगी में पहली बार कुछ साहित्यिक कही जाने वाली किताबें उपहार में दी। उसने उस दिन मेरे अंदर लेखक बनने का उत्साह पैदा कर दिया था। अगर मैं कभी लेखक बनता, कभी मेरी कोई किताब प्रकाशित होती, तो हो सकता है उसका समर्पण मैं ये लिखता, अपने बड़े भाई जैसे कमलेश सिंह के लिए, जिन्होंने मेरे अंदर लेखक होने का विश्वास पैदा किया। जीवन ने अभी तक उतना समय ही नहीं दिया कि कुछ लिख पाऊं। मैं तो फेसबुक स्टेटस भी मुश्किल से लिख पाता हूं, लेकिन समय मिलते ही ऐसा कुछ जरूर लिखूंगा जो व्यापक समाज के हित में हो। फिलहाल हमारे उस शहर में जहां गार्जियन कोर्स की किताबों के अलावा कुछ भी पढ़े जाने को अपने बच्चों का बिगड़ जाना मानते थे, जहां पुस्तक भंडारों में कोर्स की किताबों के अलावा कुछ मिलती थी तो कंपटीशन की किताबें, ऐसे में विश्व साहित्य की क्लासिक समझी जाने वाली किताबों का तोहफा मेरे लिए सचमुच नायाब था। वो तोहफा मुझे मिला कमलेश सिंह के सौजन्य से। ना, उसने मुझे किताबें खरीद कर नहीं दी थी। जब दुकान से कोई किताब नहीं खरीद सकता था तो वो कहां से खरीदता। असल में इस चिट्ठी की तरह इन किताबों का भी एक किस्सा है। हमारे शहर के बीचों बीच किसी जमाने में चुन्नी लाल साव सार्वजनिक पुस्तकालय था। अच्छा खासा भवन था, अदब की मंजिल थी, इस बात के सबूत की तरह कि उस शहर में पढ़ने लिखने वाले लोग भी रहते हैं। शहर के गणमान्य लोग बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे कि टाउन थाना, जो शहर के कोने में था, उसे शहर के बीचों बीच बनाया जाए। एक बार शहर में एक युवा SP आए। जब उनसे मांग की गई तो उन्होंने गणमान्य लोगों की मांग पर तत्काल कार्रवाई शुरू की और उनको ये सुझाव दिया कि शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी बिल्डिंग पुस्तकालय की है, अब वहां ज्यादा लोग आते जाते तो है नहीं, अगर वहां थाना खुल जाए तो लोगों का कल्याण होगा, पुस्तकालय उनके किस काम का है। गणमान्य लोग इस बात पर राजी हुए कि फिलहाल थाना वहां खोल दिया जाए, बाद में जब थाने की अपनी बिल्डिंग बन जाए तो पुस्तकालय को वहां वापस स्थापित कर दिया जाएगा। यही तय हुआ कि फिलहाल किताबों को एक कमरे में रखकर पुस्तकालय के बाकी कमरों में पुलिस थाना अपना काम करे। अब आप कहेंगे कि मैंने कहानी शुरू की थी कमलेश सिंह और उसके द्वारा भेंट की गई किताबों की और मैंने बात शुरू कर दी टाउन थाने की, तो अर्ज कर दूं कि सारी बात मिली जुली है। यथार्थ कभी इकहरा होता है क्या। हुआ ये कि एक बार मारपीट के एक केस में कमलेश सिंह को थाने में एक रात के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं उसके बाद शहर के कई प्रोफेसरों को, अपने कई पढ़ाकू सहपाठियों को वो किताबें बांटने लगा था। असल में अब तक थाने में लॉकअप नहीं बन पाया था, इसलिए कभी कभार अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे किताबों वाले गोदाम में बंद कर दिया जाता। उस कमरे में उस रात कमलेश ने देखा कि कमरे की गलियारे की तरफ खुलने वाली खिड़की का एक पल्ला टूटा हुआ था और उसे बंद करने के लिए वहां ईंटों का स्टैक लगाया हुआ था। ईंटों को हटाते ही वहां से बाहर जाने का रास्ता निकल आता था। ना, वो उस रास्ते से निकलकर भागा नहीं। भागता क्यों, अगली सुबह तो उसे छूट ही जाना था। छूटने के बाद उस रास्ते का इस्तेमाल वो किताबों को बाहर ले जाने के लिए करने लगा। किताबों की चोरी चोरी नहीं होती, किताबों को उनके पढ़ने वालों तक पहुंचा देना तो पुण्य का काम होता है। जिस दिन वो उस रास्ते मुझे अंदर ले गया था अपनी मनपसंद किताबों का इनाम देने के लिए, तब उसने मुझसे ये बात कही थी। दुर्भाग्य से मुझे हिंदी लेखकों के नाम उस समय तक अधिक पता नहीं थे। मैंने वहां से दुनिया के कुछ बड़े बड़े लोगों की किताबें चुनी। उसने कहा था कि कोई 5 किताबें चुन लो। मैं उस दिन पहली बार घर कुछ महान साहित्य लेकर आया। लियो टॉल्स्टॉय का उपन्यास अन्ना कैरेनिना, फ्योदोर दोस्तोवस्की का उपन्यास अपराध और दंड, चेखव की कहानियों की किताब, प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर भाग 1, और एक किताब थी साहिर लुधियानवी की तलखियां। मुझे याद है उस दिन मैं घर आया तो अपने पढ़ने की टेबल पर उन किताबों को मैंने एक कोने में सजाकर रख दिया था। रात में खाने के बाद लैंप जलाकर बारी बारी से उनको पढ़ता रहा। उस एक घटना ने मुझे आम विद्यार्थियों से कुछ अलग, कुछ खास बना दिया था। ऐसे विद्यार्थी जो सिर्फ कोर्स की किताब और समय बचाने पर कंपटीशन की किताब पढ़ते और अच्छे कहलाते, उपन्यास कहानी पढ़ने वाले कभी अच्छे विद्यार्थी नहीं कहलाए। बहरहाल मैंने किस्से कहानी पढ़ना शुरू कर दिया तो कमलेश सिंह की वजह से। उसने मेरे लिए ज्ञान का दूसरा दरवाजा खोल दिया था, बरास्ते खिड़की। कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसर बीएन सिंह ने मेरे एक सहपाठी विमलेश को जो कहानी सुनाई थी वो कुछ और ही थी। उस थाने का प्रभारी कमलेश के एक पारिवारिक मित्र के परिवार का था। उसने ये योजना बनाई कि अगर किताबों से भरे उस गोदाम को खाली कर दिया जाए तो लोगों की स्मृतियों से भी कुछ समय बाद वहां पुस्तकालय होने की बात मिट जाएगी। सार्वजनिक रूप से थाना प्रभारी किताबों को वहां से हटवाए तो उससे शहर के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों को वहां पुस्तकालय होने की बात याद आ सकती थी। वे पुस्तकालय का भवन वापस मांग सकते थे। इसलिए उसने कमलेश सिंह से कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो उन किताबों को वहां से खिसका दे। उसके बाद ही कमलेश के मन में पुस्तक दान जन कल्याण की भावना जागृत हुई। वैसे विमलेश ने यह भी बताया कि बीएन सिंह सर के किताबों के टेबल पर 8-10 नई किताबें उसे दिखाई देने लगी हैं, जो उसे लगता है कमलेश सिंह ने ही उस लाइब्रेरी से लाकर दी होंगी। वैसे इस बात का उसके पास अनुमान के अलावा कोई और प्रमाण नहीं था। अब जबकि मुझे खुद भी किसी को भी चिट्ठी लिखे पता नहीं कितने साल हो गए हैं, मेल फोन के उस दौर में मैं उस चिट्ठी को देखकर भावुक हो रहा हूं। इस चिट्ठी को कमलेश ने अपने हाथ से अपने अक्षरों में उतारा था, मेरी प्रति मेरे पास रह गई। इस चिट्ठी से उन कई चिट्ठियों की याद आ रही है। अगर कमलेश सिंह के लिए मेरी तरफ से किसी गुमनाम सुम्मी को लिखे गए इस पत्र की तरह अन्य पत्र भी इसी तरह किन्हीं किताबों में दबे मिल जाएं तो हो सकता है कोई प्रकाशक उन पत्रों का संग्रह छाप दे। लेकिन मुश्किल ये है कि उन दिनों की अब और किताबें वहां भी घर में दिखाई नहीं देती हैं। सब कुछ पुराना गुम होता जा रहा है। वहां भी हर बार कुछ नया होता रहता है। डिश टीवी, सौर ऊर्जा, कितना कुछ बदलता जा रहा है। चिट्ठियों की वो दुनिया कितनी पीछे छूट गई है। आप सोच रहे होंगे, कमलेश सिंह अपने दादा से बड़ा नेता बनना ख्वाब था उसका। दादा ब्लॉक प्रमुख ही मरे, वो विधायक बनना चाहता था, प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप बनाना चाहता था, एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा भी। ताकत के जोश में रहने वाला कमलेश सिंह निर्दलीय लड़ गया और सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता से हार गया। कुछ अधिक जल्दी में था, अचानक ही मारा गया। अगले चुनाव का माहौल गरमा रहा था कि एक रात अंधेरे में कुछ लोग आए और मारकर चले गए। उसकी मौत न किसी विद्रोह का कारण बनी, न किसी सेलिब्रेशन का। न जाने कितने कमलेश सिंह इसी तरह उन दिनों धोखे में मारे जा रहे थे। सब कुछ बदल रहा था, यथार्थ पहलू बदलता चला जा रहा था। उसके जीवन की तरह उसके मौत की भी कई कहानियां बनी, लेकिन सच्चाई यही थी कि कमलेश सिंह मारा गया। जल्दी ही सब भूल भाल गए। कौन कमलेश, कौन सिंह? परिदृश्य पर लोग आते जा रहे थे, लोग गुम होते जा रहे थे। मुझे भी कुछ कहां याद था, वो तो वीरेश्वर प्रसाद सिंह की किताब में ये चिट्ठी मिल गई और सब कुछ याद हो आया। वरना अब कहां याद रहता है कुछ भी? समय की सबसे बुरी मार याददाश्त पर ही तो पड़ी है। कितना कुछ है याद रखने के लिए कि कितना कुछ भूलना पड़ता है। नोट: कमलेश को पता नहीं था, कथावाचक ने बताया नहीं। बतौर लेखक मेरा ये दायित्व बनता है कि बता दूं, कहानी के आरंभ में पत्र में जिस कविता का उपयोग किया गया है वो धर्मवीर भारती की कविता है। आप कहेंगे कि ये कविता उसने कहां से पढ़ी थी? यही तो बात है, पूर्णेंदु सर ने पुरस्कार में उसे अपनी तरफ से एक किताब भेंट की थी, कवि धर्मवीर भारती की कविताओं का संकलन ठंडा लोहा। धन्यवाद। प्रभात रंजन की कहानी, पत्र लेखक, साहित्य और खिड़की। कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस, URL kathapath.blogspot.in।